सफ़र का थका मुसाफिर अक्सर आराम की तलाश में अपनी माँ की गोद तलाशता है। उस गोद में हर बेचैनी और थकान से राहत मिलेगी। ईशान भी अब कशिश को ढूंढते ढूंढते थक गया था, हार गया था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थीं, पर घर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। थका हारा वो नाउम्मीद होकर घाट की ओर बढ़ गया। ईशान ने इतना निराश और हारा हुआ पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तड़प, बेचैनी, व्याकुलता, बेबसी, निराशा, खौफ जैसे कई भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। बेचैन, तड़पते दिल का सुकून तलाशते हुए उसने घाट पर कदम रखा। निराशा से सर झुकाए अभी कुछ सीढ़ियां उतरा ही था कि बच्चों की चहकती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शाम की आरती का वक्त बीत चुका था। घाट पर गंगा आरती देखने उमड़ा लोगों का हुजूम अपने अपने ठिकानों को लौट चुका था। उस सन्नाटे में गूंजते बच्चों की मासूम खिलखिलाहट ने ईशान का ध्यान अपनी ओर खींचा। घाट की सीढ़ियों पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर कुछ आदमी और औरतें खड़ी थीं। शायद ये बच्चे उन्हीं के साथ आए थे। ईशान उन बच्चों को देखने लगा था जो हर चिंता फिक्र से बेखबर खुद में मस्त थे। उनकी खिलखिलाती हंसी और निश्चल मुस्कान ईशान को कशिश की शिद्दत से याद दिला गई। अपनी जगह पर खड़ा ईशान उन बच्चों को देख रहा था जबकि दिलो दिमाग पर कशिश और उसकी यादें छाई हुई थीं। अचानक ही कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका बल खाते हुए आया और उसकी सांसों को एक जानी पहचानी खुशबू से महका गया। पल भर को उसकी पलकें झुक गईं जैसे उन हवाओं में घुली खुशबू को खुद में समा रहा हो। अगले ही पल उसने आंखें खोलीं और भटकती निगाहें घाट की सबसे आखिरी सीढ़ी पर कोने में बैठी लड़की पर जाकर ठहरीं। जीवन की बुझती लौ को जैसे उम्मीद की एक चिंगारी ने जिंदा कर दिया था। उसके थकान भरे हारे हुए वजूद में जैसे नई ऊर्जा भर गई थी। निराशा, नाउम्मीदी से घिरा मन नई उमंगों से भर गया था। वो भला उस शख्स को पहचानने में गलती कैसे कर सकता था जिसकी आहट से उसे पहचान जाता था? कैसे उस खुशबू से बेखबर रह जाता जो उसके रूह में बस चुकी थी? वो कशिश ही थी, वही कशिश जिसे वो अब तक पूरे बनारस में ढूंढता फिर रहा था। यहाँ थी वो, पर क्यों? कशिश के मिलने की खुशी थी, पर जैसे ही दिमाग में ये सवाल आया, बीते घंटे जो उसने बनारस की खाक छानने और इसे ढूंढने में बिताए थे सब उसकी आंखों के सामने नाचते हुए मानो उसे उकसाने लगे थे। चेहरे पर आए कोमल भाव पल में बदल गए थे। गुस्से की शिद्दत बढ़ गई थी और आंखों के महीन डोरे सुर्ख रंग में रंग गए थे, पर अब वो गुलाबी रंग दर्द नहीं उसके गुस्से का प्रमाण दे रहा था। तेज कदमों से वो कशिश की ओर बढ़ा और गुस्से व बेचैनी से तेज आवाज में उसे पुकारा, काशी। उसकी सख्त कठोर आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी तो उसने सर घुमाया। कशिश ही थी वो, पर उसके चेहरे पर उसके नाम सी कशिश नहीं थी आज। वो शरारत से चमकती आंखें आज जैसे गमों से सागर में डूबी थीं। सुर्ख आंखों में गुलाबी पानी तैर रहा था और वे सूजी आंखें, गालों पर मौजूद कुछ सूखे आंसुओं के निशान और कुछ मौजूद आंसू की बूंदें चीख चीख कर उसके रोने की गवाही दे रही थीं। सूजा सूजा सा बेनूर चेहरा जिस पर गमों के गहरे बादल छाए थे और रूखे खामोश लब जिनके पीछे जाने कितनी ही दर्द भरी चीखों ने दम तोड़ा था। उसकी सूनी मांग, खाली कलाइयाँ, मंगलसूत्र से विरक्त कला अलग ही कहानी बयां कर रहा था। ईशान कशिश के इस बिखरे गमगीन वजूद को देखकर बुरी तरह चौंक गया। गुस्सा तो जैसे पल भर में अपना वजूद खो चुका था और उस सख्त चेहरे पर चिंता, फिक्र, तड़प, दर्द जैसे भाव उमड़ने लगे थे, पर नाराजगी अब भी बाकी थी जो उसके आगे के शब्दों में बखूबी झलकी। कशिश, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? मैं कब से पागलों जैसे हर जगह तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। और फोन कहाँ है तुम्हारा? ऑफ क्यों आ रहा है? जवाब दो कशिश, क्या है ये सब? ईशान ने कब सवाल एक साथ पूछे थे जिनमें नाराजगी, फिक्र, तड़प, निराशा जैसे कई भाव झलक रहे थे, पर कशिश का चेहरा अब एकदम सपाट था। उसने अपनी हथेलियों से अपनी भीगी आंखों की नमी को साफ किया और तल्ख लहजे में जवाब दिया, चार्ज नहीं था तो फोन ऑफ हो गया और आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। कोई दो महीने की छोटी बच्ची नहीं हूं मैं जो खो जाऊंगी। उसका ये बेरुखी भरा रवैया देखकर ईशान बुरी तरह चौंक पड़ा और हैरान परेशान निगाहों से उसे देखते हुए चिंतित स्वर में बोला, कशिश क्या हुआ है? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कशिश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और चेहरा वापस सामने की ओर घुमाए दूर दूर तक फैली गंगा मैया को सूनी आंखों से निहारने लगी। पर कशिश के इस बदले रूप ने ईशान को सकते में डाल दिया था। उसका दिल आगाह करने लगा था कि कुछ तो गलत है। कशिश का स्वभाव ऐसा नहीं है, उसके इस तरह के व्यवहार के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तो इस बिखरी हालत में यहाँ क्या कर रही हो तुम, और घर पर सबसे झूठ क्यों कहा कि दीदी से मिलने जा रही हो? सच बताती तो आने नहीं देते, और मुझे कुछ वक्त अकेले बिताना था। ईशान के सवाल पर कशिश ने एक बार फिर सपाट लहजे में जवाब दिया। उसके उखड़े मूड को देख कर ईशान ने नरम लहजे में बोला, यहाँ आना था तो मुझे बता देती, मैं साथ आता तुम्हारे, अकेले क्यों आई? कितना परेशान हो गया था मैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। उसकी आवाज में शिकायत झलकने लगी थी, पर कशिश पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अब भी उसी रूखे अंदाज में जवाब दिया, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे अकेले रहना था। तो रह लेना अकेले, जाने कितनी देर से यहाँ ऐसे बैठी हो, चलो अब घर चलो। ईशान ने उसकी बाह पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर कशिश ने उसके हाथ को हटा दिया और उसकी तरफ निगाहें घुमाते हुए गंभीरता से बोली, नहीं, मैं अब वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। ईशान, जो पहले ही उसके इस तरह के अजीब व्यवहार के कारण खींच उठा था, उसकी बात सुनकर झल्लाते हुए उस पर भड़क उठा।